ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप को याद करो। बेहद पूरे यूनिवर्स के बाप को याद करो, इसमें ही ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है, तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई, यह है नई पढ़ाई। प्रश्न, संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है। संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? उत्तर, वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं। योग को भक्ति भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो। अव्यभिचारी याद क्या होगा? एक की याद, एक की याद, और वहां क्या होता है? अनेकों की याद। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती है, ज्ञान नहीं होता। द्वापर में भक्ति होती है, ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। दुनिया वाले भक्ति योग कह देते हैं। परंतु बाबा कहते उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता, उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। योग तब लगता है जब वहां से कोई प्राप्ति होनी हो, वहां से कोई प्राप्ति होनी हो, और प्राप्ति नहीं होनी है तो योग कैसे होगा?
नहीं है योग
क्या? हाँ जी,
नहीं
योग तो उसी से होता है जिससे प्राप्ति हो, जिससे प्राप्ति नहीं उससे योग कैसे? गीत, किसी ने अपना बना के अपना मुस्कुराना सिखा। ओम बेहद का बाप समझाते हैं शास्त्रों की पढ़ाई। किसकी पढ़ाई? वे कोई पढ़ाई नहीं है। जितने भी दुनिया भर के शास्त्र लिखे गए, मनुष्यों द्वारा लिखे गए, अल्प बुद्धि के द्वारा लिखे गए, वे कोई पढ़ाई नहीं। क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि सारी व्रत कथाओं में एम ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि ये व्रत रखोगे तो आपको पुत्र पैदा होगा, ये व्रत रखोगे 16 सोमवार रखोगे पति बड़ा सुंदर मिल जाएगा, है ना? और भी हर एक व्रत के अंदर कोई ना कोई एम ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, परंतु वो क्या है? वो एम ऑब्जेक्ट उससे प्राप्त नहीं होता। लिख दिया, प्राप्त नहीं होता तो क्या हो गया? छूट हो गया ना। आप जिस कोर्स के लिए एडमिशन लो, आपको कह जी हम आपको इंजीनियर बनाएंगे और आपकी डिग्री कहीं चले ही ना, फर्जी डुप्लीकेट। डुप्लीकेट भी अच्छा होता है, मतलब नकली,
कोई वैल्यू।
क्योंकि कितने भी 1600 रख दो, पति किसी को एक को सुंदर मिला हो बता दो। पुत्रदा व्रत रखने से किसी को पुत्र मिला हो तो बता दो। सत्यनारायण कथा करने से किसी को कोई लाभ हुआ तो बता दो। एम ऑब्जेक्ट नहीं है। शास्त्रों से कोई दुनिया को पता नहीं पड़ता अमेरिका कहाँ है। किसी भी शास्त्र में नक्शा नहीं है कि वहां अमेरिका है, वहां रूस है। किसने ढूंढी ये बातें? शास्त्रों में नहीं है। क्यों नहीं है? थे
भारत का तो थे थोड़ी
थे, शास्त्र जब लिखे गए तब थे, परंतु किसी को पता नहीं था कि इस धरती पर कहीं अमेरिका है, रूस है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। नहीं, चार्टों में है। ये पता चला आज से 500 साल पहले, और शास्त्र लिखे गए 2000 साल से पहले। नहीं समझे? 500 साल पहले 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ऐसे ही यात्री निकले, उन्होंने एक ने किसी ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, तो किसी ने अमेरिका की खोज की, तो किसी ने किसकी खोज की। 500 साल पहले तक किसी को पता ही नहीं था, तो शास्त्र तो लिखे गए 2000 साल पहले, वो कैसे लिख देते? कितनी गहरी लाइन है जो दुनिया वालों का ध्यान जा ही नहीं सकता। किसने ढूंढी ये बातें? शास्त्रों में नहीं, क्योंकि शास्त्र लिखे जा चुके थे। कहते हैं फलाने ने ढूंढी, वास्को डी गामा ने भारत को खोज किया। कब किया? 1498 में किया, आज से 500 साल पहले कर दिया। दूसरे इलाके ढूंढते हैं अपने रहने लिए, अपने रहने के लिए दूसरा इलाका ढूंढते हैं। देखा मनुष्य बहुत हो गए हैं, रहने लिए जमीन तो चाहिए ना, तो देखा इस धरती पर रहना मुश्किल हो गया, तो कहते चंद्रमा पर जाकर के रहे। जमीन तो चाहिए ना। अब ये सब बातें पढ़ाई की है, इसको कहा जाता है शिक्षा, एजुकेशन। तुम्हारा भी ये एजुकेशन है, इसको आश्रम कहें अथवा इंस्टीट्यूशन कहें, यूनिवर्सिटी कहें, इसमें सब आ जाता है। इसको घर भी कहो तो घर भी कह सकते हो, इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हो, यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो, आश्रम भी कह सकते हो। उस पढ़ाई के नक्शे आदि और हैं, जो दुनिया वाली पढ़ाई है उनके नक्शे आदि और हैं। शास्त्रों से रोशनी नहीं मिलती। तमसो मा ज्योतिर्गमे, सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकता। उन शास्त्रों से रोशनी नहीं मिलती। पढ़ाई से रोशनी मिलती है, परंतु उन शास्त्रों से रोशनी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जिस समय वो शास्त्र लिखे गए, वो शास्त्र जो कुछ वो जानते थे वही तो बताएंगे। जो वो जानते नहीं वो कैसे बता देंगे? तुम्हारी भी पढ़ाई है। वैकुंठ किसको कहा जाता है? ये ना उस पढ़ाई में है ना शास्त्रों की पढ़ाई में है, ये नॉलेज ही नहीं है जो एक बाप ही बतलाते हैं। मनुष्य तो कह देते स्वर्ग नर्क सब यही है, बाप ही समझाते हैं। स्वर्ग नर्क किसको कहा जाता है? ये बातें ना शास्त्रों में है ना उस एजुकेशन, किसमें है ये फिर बातें? स्वर्ग और नर्क पुराणों में। ये पुराण अब लिखे गए 2000 साल के बाद, जो वेद शास्त्र लिखे गए वो 2000 साल पहले लिखे गए। ठीक है, ना तो नई बातें होने कारण मनुष्य मूंझते, कहते हैं ऐसा ज्ञान तो कभी सुना नहीं है जो तुम रोज सुनाते रहते हो, बुद्धू बनाते रहते हो हमें। ये तो नई बातें हैं, वंडरफुल बातें हैं जो कभी कोई ने सुनाई नहीं है, भी बरोबर नई बातें। ये पढ़ाई है ही नहीं, बातें नहीं, ना उस एजुकेशन वाले सुना सकते ना शास्त्र सुना सकते ना सन्यासी सुना सकते। वो सुना सकते होते तो फिर परमात्मा को बुलाने की जरूरत क्या होती? परमात्मा को आने की क्या जरूरत होती? इसलिए परमपिता परमात्मा को ही क्या कहा जाता है? ट्रुथ कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? ज्ञान का सागर। किसी भी देहधारी को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, चाहे कोई धर्म पिता हो, चाहे कोई पैगंबर हो, चाहे कोई भी साधु साधु सन्यासी महात्मा, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाला हो, वो भी शांति के साथ, उनको ज्ञान का सागर नहीं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये शब्द वंडरफुल शब्द है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, कंप्लीट इतिहास और भूगोल सिवाय परम पिता परम आत्मा के कोई समझा नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता। ज्ञान से स्वर्ग और नर्क का विस्तार भी सुनाते हैं, ज्ञान का इस नर्क का स्वर्ग का विस्तार भी सुनाते हैं। ये नई बातें हैं इस पढ़ाई में, सब कुछ है, ज्ञान भी है, योग भी है, पढ़ाई भी है, भक्ति भी है, योग को भक्ति भी कह सकते हैं। कब कब योग को भक्ति कह सकते हैं? क्योंकि एक के साथ योग लगाना, उनको याद करना होता है। वे भक्त लोग भी याद करते हैं, पूजा करते हैं, गाते हैं, वे भक्ति करना कोई योग नहीं कहे, समझो। जैसे मीरा थी, श्री कृष्ण के साथ योग लगाती थी, उनको याद करती थी, परंतु उसको भक्ति कहा जाता। उनकी बुद्धि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं, इसको ज्ञान भी कहते हैं, भक्ति भी कहते हैं। योग लगाते हैं, एक को याद करते हैं। सतयुग में ना भक्ति होती है ना ज्ञान होता है। सतयुग में ना भक्ति होती है और ना ज्ञान होता है। संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही हैं। और द्वापर से लेकर क्या चलती आई, केवल भक्ति चलती आई। किसको याद करना, उसको भक्ति कहते। यहां ये ज्ञान भी है तो योग भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, भक्ति भी है। समझ सकते हैं, वे सिर्फ भक्त हैं, तत्व से योग लगाते हैं, तत्व से योग। परंतु उनका है अनेकत्व से योग, इसलिए उनको भक्त कहते। तुम्हारा है ये अव्यभिचारी योग, ये ज्ञान सागर खुद बैठ पढ़ाते हैं, ये ज्ञान सागर खुद बैठ पढ़ाते हैं, उनसे योग लगाना होता है। वे तो आत्मा को ही नहीं जानते, वे तो आत्मा को ही नहीं जानते, हम तो जानते हैं। परम पिता परम आत्मा बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से हम बाप के पास चले जाएंगे, हम बाप के पास चले जाएंगे। वे हनुमान को याद करते हैं तो उनका साक्षात्कार हो जाता है, उनका साक्षात्कार हो जाता, उनको व्यभिचारी कहा जाता, उनको व्यभिचारी कहा जाता। ये है अव्यभिचारी योग, ये है अव्यभिचारी योग। सिर्फ एक बाप को याद करना है, एक बाप को याद करना है, तो इसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य सब इकट्ठे हैं, और वे उन्हों का सब अलग अलग है, वे उन्हों का सब अलग अलग है। भक्ति अलग, ज्ञान भी सिर्फ शास्त्रों का है, वैराग्य भी हद का है, यहां बेहद की बात है, यहां बेहद की बात है। हम बेहद के बाप को जानते हैं, हम बेहद के बाप को जानते हैं, इसलिए उनको याद करते। वे भव शिव को याद करते, परंतु विकर्म विनाश नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। विकार विनाश होने का ज्ञान ही नहीं, विकार में विनाश होने का ज्ञान ही नहीं। यहां तो बाप की याद से विकार में विनाश होते हैं, वहां काशी कलवट खाते हैं तो उनके विकार में विनाश होते हैं, भोगना भोगनी पड़ती है। परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे मुआफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं, नहीं, उनके विकार सजाएं खाते खाते खत्म होते हैं, खत्म होते हैं, माफ नहीं हो जाते। तो ये पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, इसमें सब है, इसमें सब है। सिखलाने वाला एक ही बाप है, सिखलाने वाला एक ही बाप है। इनको आश्रम अथवा इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, आश्रम अथवा इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ बड़ा अच्छा है। आगे ओम मंडली नाम रखा था, रॉन्ग था। आगे ओम मंडली नाम रॉन्ग था। अभी किसी का ओम मंडली नाम है? एक ओम मंडली बनी है जी, एक और बहन पैदा हो गई है जो कहती है शिव बाबा मेरे में आता है और वो मुरली चलाता है, तो वो दादी गुलजार की तरह नकल करती है, मुरली चलाती है कि शिव बाबा मेरे में मुरली चला रहे हैं। उन्होंने अपनी जो मंडली बनाई है उसका नाम ओम मंडली रखा और वो राष्ट्रीय गान गाते हैं, वंदे मातरम का गीत गाते हैं और उनके क्या बोलते हैं साड़ी में झंडे की तीन लाइनें भी होती, सफेद साड़ी सफेद है पर तो उसके साड़ी में बॉर्डर लगा है उसमें तिरंगा का और भारत माता का पीछे ओम भारत माता, ये इन्होंने जोड़ के अपनी एक अलग से नई ओम मंडली बना दी और बाबा कह रहे हैं कि ओम मंडली नाम रॉन्ग था, तब रॉन्ग था तो आज भी रॉन्ग है। तो बाबा उनके अंदर आता है तो वो उनको नहीं समझा सकता था कि आपने ओम मंडली नाम क्यों रख दिया। क्या वंडरफुल बाबा जो है ना मुरलियां बेचता है, क्या लिखता है, अभी समझ आई ये नाम बिल्कुल अच्छा है। प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, कोई भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा कुमार तो तुम भी हो, बाप है सबका रचयिता, उनको पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, सूक्ष्म वतन वासी नई सृष्टि रचते हैं तो जरूर प्रजा पिता ब्रह्मा चाहिए, प्रजा पिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन वाला तो यहां आ ना सके, वे है संपूर्ण अव्यक्त, यहां तो साकार ब्रह्मा चाहिए ना, वे कहां से आए, मनुष्य इन बातों को समझ ना सके। चित्र तो है ना, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए परंतु ब्रह्मा आए कहां से, फिर एडॉप्शन होती है, जैसे कोई राजा को बच्चा नहीं होता, बच्चा नहीं होता तो एडॉप्ट करते हैं, बाप भी इनको एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा बाबा को, फिर इनका नाम बदल कर क्या रखा, दादा लेखराज को एडॉप्ट करके इसका नाम क्या रखा, प्रजा पिता ब्रह्मा। वे ऊपर वाला जो ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है, वे ऊपर वाला तो नीचे आ ना सके, लाइन समझ रहे हैं, नीचे वाले को ऊपर जाना है, तो ऊपर वाला है कोई, समझने वाली बात,
नीचे वाला जाता ऊपर तो कोई
आए, ऊपर वाला नीचे आ नहीं सकता, तो नीचे वाले को ऊपर जाना है, तो ऊपर वाला केवल मॉडल है, ऊपर वाला केवल लक्ष्य है। क्या क्या बातें जो ना बाबा स्पष्ट करता है, वो है अव्यक्त अशरीरी। कौन है अशरीरी, आत्मा तो है ही नहीं, ये है व्यक्त। तो इस रहस्य को भी अच्छी रीति समझना है, इसलिए बाबा कहते इस रहस्य को भी अच्छी रीति समझना है कि वो केवल आकार है, वो केवल लक्ष्य है। जैसे किसी को बताया जाता है कि ये बिल्डिंग बनानी है, मॉडल नक्शा, मॉडल भी बना के रखते हैं ना, ऐसे कमरे होंगे, ऐसे रंग होंगे, ऐसे ये होगा, ऐसे वो कंप्लीट मॉडल बना के रखते हैं, ड्राइंग बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो इस रहस्य को भी अच्छी रीति समझना है, क्योंकि सबका प्रश्न उठता है। कहते हैं दादा को कभी ब्रह्मा, कभी भगवान, कभी श्री कृष्ण कहते हो, रोजाना नए नए नाम रखते रहे, तो बद्ध एक है, आत्मा एक है। अब इनको भगवान तो कहा नहीं जाता, फिर ब्रह्मा को भगवान तो नहीं कहा जाता, बाकी ब्रह्मा और श्री कृष्ण को तो कह सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण सुंदर होता है, फिर वो काला हो जाता है, श्याम बन जाता है, सुंदर से श्याम बनता है, तो जब रात होती है तब कहेंगे ब्रह्मा। अब कृष्ण तो नाम नहीं रहेगा ना उसका, वो आत्मा बनी ना, और जब दिन है तब कहेंगे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा का अभी ये अंतिम जन्म है, और ये श्री कृष्ण है आदि की आत्मा। पहला जन्म श्री कृष्ण और लास्ट जन्म ब्रह्मा। ये क्लियर कर लिखना पड़े, 84 जन्म राधे कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के बताने पड़े, ये फिर उनको एडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा आकर उनको क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात हो जाती है, वही फिर लक्ष्मी नारायण का दिन और रात, उनकी वंशावली का भी ऐसे हुआ। तुम आप ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे, तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का भी दिन और रात हुआ ना, ये बड़ी समझने की बातें हैं, चित्रों में भी क्लियर है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, अंतिम जन्म में ब्रह्मा आए कहां से, किससे पैदा हो, तो ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं, जैसे राजा एडॉप्ट करते हैं उनको राजकुमार कहते हैं। राजा ने किसी को एडॉप्ट किया तो उनको क्या कहते हैं? राजकुमार कहते हैं। ट्रांसफर कर देते हैं प्रिंस ऑफ फलाना, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ देश का नाम लगा देते हैं ना। तो पहले तो प्रिंस नहीं था, राजा ने एडॉप्ट किया तो उसको क्या बना दिया? प्रिंस बना दिया। किसी राजा का अपना बेटा नहीं है, वो जिस बेटे को गोद लेगा तो क्या बन जाएगा? प्रिंस बन जाएगा, राजकुमार बन जाएगा। ये रस्म रिवाज चलती आई है, ये रस्म रिवाज चलती आई है। बच्चों को ये बुद्धि में आना चाहिए। दुनिया नहीं जानती कि बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये रोशनी तुम बच्चों को है, तुम बच्चों को है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। आगे चलकर छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत तीखी होती जाएंगी, छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत तीखी होती जाएंगी, क्योंकि कुमारियां हैं। लिखा हुआ भी है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए, कुमारियों का चमत्कार नंबर वन में गया है। मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई है। कहा जाता है डॉक्टर शोज मदर, डॉक्टर शोज मदर। मदर तो नहीं बैठे कोई से बात करेगी, ये मां तो हो गई गुप्त, ये मां तो हो गई गुप्त। वे मम्मा है प्रत्यक्ष, तो तुम शक्तियों अथवा बच्चों का काम है मां का शो करना, मां का शो करना। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां भी हैं जिनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है। कौरव संप्रदाय में भी किनों के मुख्य नाम है ना, जो महारथी हैं, यहां भी महारथियों के नाम हैं, यहां भी महारथियों के नाम हैं। सबसे बड़ा है शिव बाबा, सबसे बड़ा है शिव बाबा। ऊंचते ऊंच भगवान, उनका ऊंचा ठाव, वास्तव में ठाव रहने का स्थान तो हम आत्माओं का भी ऊंच है। मनुष्य तो सिर्फ महिमा करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हैं, परंतु हमको जन्म मरण में आकर पार्ट बजाना है। वे जन्म मरण में नहीं आते, पार्ट उनका भी है, परंतु कैसे है, परंतु कैसे है, ये भी तुम जानते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो, ये शिव बाबा का रथ है, ये शिव बाबा का रथ है। अश्व अथवा घोड़ा भी है, बाकी वे घोड़ा गाड़ी नहीं है। ये भी जो भूले हुए हैं, ये ड्रामा में नूंद है। आधा कलप हम भी भूल में भटकते भटकते एकदम भटक जाते, एकदम भटक जाते हैं। अभी रोशनी मिली है तो बहुत खबरदार हो पड़े हैं, जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हमको नष्टो मोहा बनना है, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करना है। तोड़ तो सबसे निभाना है, साथ भी रहना है। ये भट्टी भी बननी थी जैसे कल्प पहले बनी थी, अभी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे मेहनत करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहे मेहनत करनी है, यहां घर बार छोड़ने की बात ही नहीं। हम तो घर में बैठे हैं ना, कितने बच्चे हैं, लौकिक भी थे ना, थोड़ा कुछ भी नहीं नहीं है। सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं, हम तो शहर में बैठे हैं, तो उनसे तोड़ निभाना है। बाप की रचना है, बाप कमाई कर कमा कर बच्चों को वर्षा देते हैं, पहले तो वर्षा देते हैं काम विकार का। कौन? बाप कमा कर बच्चों को वर्षा देते हैं, पहले तो वर्षा देते हैं काम विकार का। लौकिक माँ बाप, बेटी है तो उसकी भी शादी, बच्चा है तो उसकी भी शादी, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आपकी शादी करें, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी करो। फिर उनसे छुड़ाकर निर्विकारी बनाना बाप का ही काम है। एक बाप विकारी बनाता, विकार का वर्षा देता, और एक बाप निर्विकारी बनाता। ऐसे भी होते हैं। कहां बच्चे मां बाप को ज्ञान देते और कहां बाप बच्चों को ज्ञान देते। यह है ही राजयोग, वे है हठ योग। आत्मा को नॉलेज मिलती है परमात्मा से, मैं ब्रह्मा राजाओं का राजा था, अब रंक बन गया हूं, रंक से राव गाया हुआ है, बच्चे जानते हैं हम जो सूर्य वंशी थे अभी शूद्र वंशी बन गए। सूर्य वंशी से क्या बन गए, ये भी समझाना पड़ता है। नरक और स्वर्ग अलग है, मनुष्य ये नहीं जानते, तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ नहीं जानते, तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ नहीं जानते। क्यों क्यों नहीं जानते? क्योंकि तकदीर में नहीं है। तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? जिनकी किनकी तकदीर में कुछ नहीं है, किनकी तकदीर में सब कुछ है, तकदीर पुरुषार्थ कराती है। तकदीर नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? एक ही स्कूल है चलता, एक ही स्कूल है चलता रहता है। कोई बच्चे आधा में गिर पड़ते हैं, कोई चलते चलते मर पड़ते हैं। जन्म लेना और मरना बहुत होता है। ये नॉलेज कितनी वंडरफुल है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना इसमें ही सारी मेहनत है, इसमें ही सारी मेहनत है। जब विकर्म विनाश हो तब तो उड़ सकें। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, ध्यान में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, ध्यान में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, इसलिए ध्यान से ज्ञान अच्छा है। ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा। ध्यान के लिए कहा जाता है ध्यान में जाने वाले आज हैं नहीं, आज हैं नहीं, तो ध्यान में जाते थे आ जाएंगे। योग में तो कमाई होती है, विकर्म विनाश होते हैं, ध्यान में कोई कमाई नहीं। योग और ज्ञान में कमाई है, ज्ञान और योग बिगर हेल्दी वेल्दी बन नहीं सकते। फिर ये घूमने फिरने की एक आदत पड़ जाती है, घूमने फिरने की आदत पड़ जाती है, ये भी ठीक नहीं। ध्यान नुकसान बहुत करता है, ज्ञान भी है सेकंड का, योग कोई सेकंड का नहीं है। जहां जीना है वहां योग लगाते रहना है। ज्ञान तो सहज है, बाकी एवर हेल्दी निरोगी बनना इसमें मेहनत है। सवेरे उठकर याद में बैठने में भी विघ्न बहुत पड़ते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं तो भी बुद्धि कहां की कहां चली जाती है। सबसे जास्ती तूफान तो पहले नंबर वाले को आएंगे ना, शिव बाबा को तो नहीं आ सकते। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, जितना याद में रहने की कोशिश करेंगे उतना तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं है, याद में रहना है, स्थिर होना है, तूफान कोई हिला ना सके। ये अंत की अवस्था है, ये रूहानी रेस है, शिव बाबा को याद करते रहो। ये भी समझने की और धारण करने की बातें हैं। धन दान नहीं करेंगे तो धन दान नहीं करेंगे तो कौन सा धन?
ज्ञान।
हाँ, धन दान नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए। दो बात की पॉइंट किसको समझाना बहुत इजी है, ये भी तुम ही जानते हो। बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, बाप ने उनको राजयोग सिखलाया, और कोई मुख से कह ना सके कि उन्हें भगवान ने ये वर्षा दिया है। दुनिया में कोई किस बात में खुश रहते हैं, तुम जिस बात में खुश हो उसको कोई नहीं जानते। मनुष्य तो अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए खुशी मनाते हैं, तुम हो सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण जो योगी और ज्ञानी हो, तुम्हारे इस अतीन्द्रिय सुख की खुशी को और कोई जान नहीं सकते। वे तो क्या क्या माथा मारते रहते हैं, मून पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं, बहुत डिफिकल्ट मेहनत है। उन सब की मेहनत क्या होनी है?
बर्बाद
हो जानी है। तुम बिना कोई तकलीफ के ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहां और कोई जा ना सके, एकदम ऊंच परम धाम में जाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा भी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा भी बनना है। साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। नंबर दो, धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है, ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है, बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी। वरदान, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भाव। संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है, ये स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाली भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। जिनके पास कौन सा सर्टिफिकेट होगा, संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। खुद संतुष्ट रहना है और सर्व को क्या करना है, संतुष्ट करना है। ये स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। तो रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर ये स्लोगन दोड़ाओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। जो संतुष्ट हैं वे सदा प्रसन्न हैं। स्लोगन, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।